हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मल्लिका ने ये सुनते ही काफी हैरान हो गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? अमन के पिता को तो स्वयं काली शक्तियों के महागुरु ने अपनी एक विशेष राक्षसी हिडिम्बा के कब्जे में किया हुआ था। फिर इतनी शक्तिशाली राक्षसी को हराकर भला अमन कैसे अपने पिता को छुड़ाकर ला सकता है? उसने कहा। अमित थोड़ा सोचते हुए बोला, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से अमन के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां कहां से आ गईं। उसने अपने पिता को छुड़ा लिया, अब मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। जल्द से जल्द मुझे इस डायन से छुटकारा पाना होगा। उसके बाद मुझे नहा धोकर अमन के पीछे पड़ जाना है, मल्लिका ने काली शक्तियों के मालिक अमित से कहा। लेकिन मालिक, हम किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अमन सर का तो कहीं कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। अमन सर एक विदेशी ट्रिप पर गए थे, लेकिन आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं लौटे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अमन सर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अमन का कहीं कुछ पता ही नहीं लग पाया है, आखिर वो हैं कहाँ? अमित थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। फिलहाल मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। तुम इस वक्त मेरा एक काम करोगी? मल्लिका के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगी कि आखिरकार काली शक्ति का मालिका में उससे क्या छिपा रहा था। साथ साथ अमन से न मिल पाने का दुख उसे काफी परेशान कर रहा था। तभी अमित ने अपनी ही भाषा में उसे काम बताना शुरू कर दिया। मल्लिका सांस थामकर अमित की बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर कई भाव आते जाते रहे। अंत में वो मुस्कुराते हुए बोली, आपका काम हो जाएगा, कहकर मल्लिका वहां से चली गई। अमित कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर करिश्मा अपने पति अमरेंद्र के साथ जिन्नातों की दुनिया में पहुंची थी। उन्हें ऐसे दो जिन्नातों की तलाश करनी थी जिन्होंने कभी कोई गुनाह न किया हो, क्योंकि अगर उनमें से किसी ऐसे जिन्नात का पता न चला तो यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोचते हुए वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। सभी जिन्नातों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी बात सभी जिन्नातों के सामने रख दी। हमें ऐसे जिन्नातों की जरूरत है जिन्होंने कभी कोई गुनाह न किया हो। तुम में से जो कोई भी ऐसा जिन्न हो जिसने किसी का कोई बुरा न किया हो, वो जल्द से जल्द सामने आ जाए। हमें इसी वक्त जिन महाराज को बचाने के लिए उन जिन्नातों की बहुत जरूरत है। करिश्मा का ये कहना था कि सभी जिन्नात एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन सामने आने वाला था, क्योंकि जितने भी जिन्नात वहां मौजूद थे सबको यही लग रहा था कि उन्होंने कुछ ना कुछ बुरा जरूर किया है। काफी देर तक कोई भी जिन उनके सामने नहीं आया। करिश्मा परेशान हो गई। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही वे वहां जाएंगे दो ऐसे जिन उन्हें तुरंत मिल जाएंगे जिन्होंने कोई गुनाह न किया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जिन आगे आने को तैयार नहीं था। करिश्मा और अमरेंद्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। करिश्मा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? मुझे ऐसे जिन्नातों की जरूरत है जिन्होंने कोई गुनाह न किया हो, क्योंकि मेरे बेटे और तुम्हारे होने वाले जिन महाराज की जान खतरे में है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग जिन आगे आया और बोला, जिन महाराज के वंशज, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्नातों में भी कितने सारे गुनहगार जिन हैं जिन्होंने कितने ही गुनाह किए हैं। इन सब जिन्नातों में बिना गुनाहों के जिन्नातों का मिलना कितना मुश्किल है। इसके लिए आपको कोई एक प्रतियोगिता करनी होगी जिसमें ये साबित हो सके कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। इसके लिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। उस जिन ने देखते ही देखते एक बड़ा सा आग का गोला बना दिया और कहा, ये खास तरह की आग है जिसके अंदर से जो कोई भी गुनहगार जिन होगा वो इसमें से नहीं गुजर पाएगा। वो इस किताब को सहन नहीं कर पाएगा और ये घेरा पार नहीं कर पाएगा। और जिस जिन ने इस घेरे को पार कर दिया, समझ लीजिए कि वो बिल्कुल बेगुनाह और बेदाग जिन है, उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। ये सुनकर करिश्मा और अमरेंद्र हैरान हो गए। उन्हें अब इस बात की तसल्ली होने लगी कि शायद उन्हें वे जिन मिल जाएंगे। उन्होंने सभी को हुक्म दिया, एक एक करके सभी आइए और इस घेरे को पार करने की कोशिश कीजिए। जो कोई भी इस घेरे को पार करेगा वही हमारे काम आएगा। धीरे धीरे एक एक करके जिन आने लगे, लेकिन कोई भी उस आग के घेरे तक नहीं पहुंच पा रहा था। उस आग का ताप उन्हें बहुत लग रहा था। करिश्मा और अमरेंद्र परेशान हो चुके थे। सोचा कि दो बेगुनाह जिन्नातों के लिए इतना समय लगेगा। धीरे धीरे कितने सारे जिन्नात आ रहे थे, लेकिन उस आग के घेरे को कोई भी पार नहीं कर पा रहा था। करिश्मा को ऐसा लगने लगा कि मानो उनका बेटा जिंदगी भर पिशाच बनकर ही रहेगा। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी अमरेंद्र ने अपना हाथ करिश्मा के हाथों पर रखा और कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है हमें दो ऐसे जिन जरूर मिलेंगे जिन्होंने कोई गुनाह न किया हो। तभी अचानक दो जिन, एक मियाँ बीवी, जो दिखने में काफी सीधे साधे लग रहे थे, आ गए। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम आग के करीब रखा, उन्हें आग से जलने का कोई एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने उस आग के घेरे को पार कर लिया। ये देखकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अंततः उन्हें बेगुनाह जिन मिल गए जो अब जिन महाराज अमन की मदद करने वाले थे। करिश्मा बहुत खुश हुई और जल्दी से खड़ी होकर उन दोनों को गले लगा लिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको मिलने में इतना वक्त लगेगा। मैंने तो सोचा था कि हमारी जिन्नातों की दुनिया में कोई किसी तरह का गुनाह ही नहीं करता है, लेकिन आज जाकर मुझे समझ में आया है कि मैं कितनी गलत थी, करिश्मा ने कहा। अमरेंद्र बोले, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि तारा बहू हमारा इंतजार कर रही होगी। वो ज्यादा देर अमन को पिशाच बने हुए नहीं संभाल पाएगी। करिश्मा को अमन का ख्याल आते ही वो तुरंत दोनों जिन्नातों को लेकर बंगले की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर तारा कुर्सी से बंधे हुए अपने पति अमन को देख रही थी, बार बार उसकी आंखें भरा रही थी। परीलोक जाने का समय नजदीक आ रहा था और अमन से बिछड़ने की बेचैनी उसे दिन रात परेशान कर रही थी। कुछ ही देर बाद अमन को धीरे धीरे होश आने लगा। वो गुस्से से तारा को घूरने लगा और अचानक उसकी आंखों का रंग बदल गया। वो एक सामान्य अमन बन चुका था। तारा को देखकर वो बोला, तारा ये सब क्या है, तुमने मुझे कुर्सी पर क्यों बांध रखा है और मैं यहाँ कैसे आया? हम दोनों तो साथ थे ना लास्ट टाइम, फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? अमन की सामान्य बातें सुनकर तारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उठकर अमन के करीब गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, अमन सर आप ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अमन उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे क्या हुआ है? और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फटाफट से मुझे खोलो। तारा ने कहा, जिस वक्त आप मुझे पिशाचिनियों के जंगल से बचाने गए थे, ठीक उसी वक्त एक पिशाच ने आप पर हमला किया था। उसने अपने कुछ अंश आपके शरीर के अंदर डाल दिए थे, जिसकी वजह से आपके अंदर पिशाच के कुछ गुण आ चुके हैं और आप एक भयानक पिशाच बन गए थे और किसी न किसी का खून पीना चाहते थे। ये सुनकर अमन हैरानी से तारा की ओर देखने लगा। तारा भी अमन को देख रही थी। अमन आंखों में आंसू लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता तारा, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तारा मेरे हाथ खोल दो प्लीज, मुझे घुटन सी हो रही है, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
अमन का इस तरह रोना शुरू हो जाने पर तारा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अमन को संभाले, लेकिन अमन उसका पति था, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, वो उसे इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। तारा आगे बढ़कर अमन के हाथ खोल दिया। वो अमन को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही तारा ने अमन के दोनों हाथ खोले, अचानक से अमन की आंखों का रंग फिर बदलने लगा। फिर से उसके बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून और लंबे बाल हो गए। उसका चेहरा बहुत भयानक लगने लगा। ये देखकर तारा खुद पर पछताने लगी। तारा को एहसास हुआ कि उसे इस तरह पिशाच की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये पिशाच अब उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा और तारा अपने ही पति के हाथों इस तरह से नहीं मरना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर आज पिशाच ने उसकी जान ले ली तो अमन ठीक होने पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे एहसास हो गया था कि पिशाच क्रिकेट की तरह रंग बदलता है और अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। तारा को अमन के हाथ खोलने पर अफसोस हुआ, लेकिन अब वो एक बार फिर जादुई बेड़ियों से उसे नहीं जकड़ सकती थी, क्योंकि वे जादुई बेड़ियां अब 24 घंटे तक वापस प्रयोग नहीं की जा सकती थीं। अमन आज़ाद हो चुका था और आज़ाद होने के बाद वो धीरे धीरे तारा की ओर बढ़ने लगा। तारा जैसे जैसे पीछे जा रही थी, अमन वैसे वैसे उसके करीब आ रहा था। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमन बहुत ही खूंखार तरीके से उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे अमन उसके करीब आ रहा था, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। अचानक तारा ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे हिम्मत मिली, लेकिन वो इस तरह अमन का सामना नहीं कर पा रही थी। अमन का अपनी आंखों के सामने इतने भयानक रूप में देखकर उसके दिल में बार बार टीस उभर रही थी। लेकिन तारा जानती थी कि उसे इस वक्त बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर वो इस वक्त कमजोर पड़ गई तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमन जल्दी ही तारा के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। क्या करेगी तारा इन हालातों में? क्या तारा अमन को बचा पाएगी या अमन के हाथों अपनी जान गंवा बैठेगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।